प्रकाश कहो सप्तभामा रुक्मिणी इत्यादि और वैकुंठ में लक्ष्मी, सब उनकी ये अंत या प्रकाश या वैभव। और इसके बाद में जो देवी दुर्गा इत्यादि जो कही जाती है महामाया, तो ये सब बिल्कुल छाया है इस जगत में। तो इस तरह से अनंत रूपों में लोग प्रकाशित और उनमें अनंत रूपों में तीन प्रधान शिव शक्ति, माया शक्ति और जीव शक्ति। मायावादी लोग, अद्वैतवादी लोग भगवान को निराकार में शक्ति कर, उनमें कोई शक्ति नहीं, किंतु शास्त्रों में सर्वत्र ही उनकी शक्ति मानी गई। नहीं तो जगत की सृष्टि भी नहीं हो, हम लोग भी नहीं प्रकाशित होते। इसमें एक शिव शक्ति, एक माया शक्ति, एक जीव शक्ति। शिव शक्ति के द्वारा वैकुंठ में जो कुछ भी चीजें हैं सब उनसे प्रकाशित हो और उनका जन्म और मरण नहीं, वो सब नित्य। और कृष्ण का शरीर वहां पर उनके परिकरों का शरीर वैकुंठ इत्यादि में या वहां पर ब्रज में जितने भी वृक्ष लता इत्यादि भी दिखते हैं, सब कुछ जितने भी हैं सब किस शक्ति का ही परिणति। और नया शक्ति जीव शक्ति को छोड़ करके और किस शक्ति को छोड़कर इस विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ दिखता है, जो कुछ दिखता है वो सब माया शक्ति का परिणाम है। जैसे हम लोगों का शरीर वृक्ष, घास, तीर, पतंग, पर्वत, नदी, नाले, जो कुछ भी इस जगत में देख रहे हैं सब ये माया शक्ति का परिणति है। परिणति मैंने माया शक्ति का ही वो रूपांतर। और ये शरीर अंदर में जो शक्ति है उसके रहने से हम देखते हैं, ये शरीर देखता है, उसके रहने से ही आंखें देखती हैं, मस्तिष्क काम करता है, पैर चलते हैं, कुछ जो कुछ भी करते हैं, वो जो शक्ति है वो है जीव शक्ति। वो भगवान की का अंश है। कैसा अंश? केवल मात्र सत्ता शक्ति या जीव शक्ति समन्वित ब्रह्म का या भगवान का वो अंश है। अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था कही क्या है? शिव शक्ति को अंतरंगा कहते हैं, अंतर अंगा, अंतर अंग में अवस्थित रहती है इसलिए अंतरंगा। और माया शक्ति को बहिरंगा, बहिरंग में अवस्थित है इसलिए इसको बहिरंगा। और जीव शक्ति को तटस्था कहते हैं। अर्थात अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति, शक्ति और माया शक्ति के बीच में यह रहती है इसलिए तटस्था। तटस्था माने स्थिर, तट पर स्थिर। तट किसको कहते हैं? नदी के किनारे उसके तट पर जब रहता है तो उसको तट पर, जहां पर जल और फल मिलता है, जहां जल और फल मिलता है उसको तट तो पाते हैं, किंतु कहाँ मिलते हैं? कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है, लंबा चौड़ा स्थान भी नहीं है, वो काल्पनिक रेखा है। वो जब पानी कम जाता है तो तट नीचे चला जाए, और पानी बढ़ जाएगा ऊपर तो वो तट ऊपर चला जाएगा। दोनों का जो मिलन स्थल है, जल और फल जहां मिलते हैं, ये काल्पनिक रेखा है। कहां मिलते हैं? जिस समय जहां रहते हैं वहीं पर मिलते हैं, किंतु वह इतना बारीक होता है चनाबारी उस पर कुछ सर्वाई नहीं कर, ये कल्पना आती थी। तो ऐसे ही जीव माया शक्ति और चित्त शक्ति के बीच में रहने के कारण वो कहां पर उपस्थित है ये ठीक से अनुमान नहीं लगाएगा। अर्थात जीव स्वरूपतः चेतन है किंतु जड़ माया में प्रवेश कर सकता है, इसलिए उसको पकड़ सकता। कब से ये माया में पड़ा हुआ है कोई ठीक नहीं, अनंत काल से, अनादि काल से है। कब से? जब से वो प्रकट हुआ, अर्थात जब से कृष्ण, तभी से वो है। तभी लोगों को समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है, उसका स्वभाव तटस्थ है, इसलिए उसको तटस्थ माने क्या? यदि माया की तरफ में देखेगा तो उसको भोग करने के लिए माया आवरण में वो फंस जाता है, और जब भगवान की तरफ देखता है, भगवान की सेवा की इच्छा होती है, तो वो वैकुंठ लेवल में चला जाता है, इसलिए उसको तटस्थ कहा। तो अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था, ये तीन शक्ति, अंतरंगा स्वरूप शक्ति सवाल कर, सवाल पर मनी सबसे श्रेष्ठ अंतरंगा शक्ति भगवान के अंगों में या चित्त जगत में प्रकाशित है, इसलिए जिसको सबसे ऊपर कहा। ये अंतरंगा शक्ति अथवा चित्त स्तर सवाल सबसे ऊपर में ठीक। और कहते कैसे कहते हैं, कहीं प्रमाण है तो उसके लिए बतला रहे हैं। हाँ, विष्णु पुराण में इसके लिए ऐसे ही नहीं करते। विष्णु शक्ति परास्रक्ता क्षेत्राख्या तथा तथा अभिज्ञातम संज्ञान कृपया शक्ति अर्थात विष्णु शक्ति का नाम है परास्रक्त। भगवान परम पुरुष है, इसलिए परम पुरुष की शक्ति का नाम पराशक्ति है, और वही तीन के रूप में प्रकट है, एक पराशक्ति, एक क्षेत्राज्ञा और एक है अपरा। तो यहां पर पराशक्ति हो गई चित्त शक्ति, और क्षेत्राज्ञा माने जीव, और अपरा माने माया। ये तीन शक्ति के रूप में लिखा है। अविद्या कर्म संज्ञान तृतीया शक्ति ईश्वर, ये जो अपरा शक्ति है ये तृतीया, ये तृतीया अपरा शक्ति। अविद्या कर्म संज्ञान, इसको अविद्या भी कहते हैं, सच्चिदानंदमय कृष्ण है, कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंदमय। सच्चिदानंद शब्द में तीन चीजें हैं, सचित आनंद। अद्वैतवादी कहते हैं कि वस्तु एक है, परतत्व वस्तु एक ब्रह्म है, द्वितीय नास्ति, दूसरा कुछ नहीं। जीव क्या है? वो ब्रह्म ही है, जीवो ब्रह्मैव न पर, दूसरा कुछ नहीं। और ये जगत असत्य है, वो लोग कहेंगे या कहते हैं तो कहेंगे जिसे तत्व सच्चिदानंद में, ये तीन आया, जो ब्रह्म सच्चिदानंद में है, शास्त्रों में भी आया है, ब्रह्म सचित आनंदमय। तो ये तीन क्यों हुआ? तीन क्यों? सब चीज आनंद, ये तीन हो गया। तुम कहते हैं एकम एव अद्वितीय, एकम एव अद्वितीय, दूसरा कुछ है ही नहीं, बस एकम एक ही है। तो यहाँ पर सचिदानंद सब चीज आनंद ये कैसे हुआ? तो वो कहते हैं जैसे बैंगन में फल बहुत लगे हुए हैं, शंकराचार्य की मैया ने कहा अरे बैंगन ले आओ, तो वो एक छोड़ करके ले आए, और तीसरे आए हैं 10-20, तो एक बैंगन में क्या होगा? इसलिए उसकी मैया ने कहा जरा अधिक बैंगन ले आए, तो वो एक बैंगन तोड़ करके ले आए। तो मैया ने कहा कि अरे इतने बैंगन में देकर के आई थी और एक भी तू ले आया, तो ऐसे कितने आदमी हैं तो काम कैसे चलेगा, अभी क्यों नहीं जाए? तो मैया एक ही था, मैंने एक ही जाए, ये कैसे ये चलो तो बस उसको ले गई। देखा जी बैंगन एक एक पेड़ में 10-10, 20-20 रख के बड़े बड़े काले काले बैंगनी रंग के बैंगन सारे बोलना सीख लिया अभी से, एक दो तीन कितने सब बैंगन लगे हैं? अरे नहीं मैया, एक 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 ही तो सबको एक एक बार एक ही बैंगन, और ये सब तुमको दिखाई नहीं पड़ता है, एक दो तीन नहीं जानता, बस एक कर दे दिखाई नहीं पड़ता है तुमको, ये 10-20 बैंगन कितने लगे हुए हैं। ऐसा वो है उनको कहा जाता है अब्दुल कादिर शेरशाह, मैंने उनको मारने पर भी लज्जा नहीं हुई, मारने पर भी कोई लज्जा नहीं, गाली देने से भी नहीं, कान कटे दिए। तो उनसे कहा गया जैसे ये सच्चिदानंद उनको कम कहा गया, तो सत मने जीव होता है वही कितनी सत माने सब, चित माने सब, आनंद माने सब, सब एक तीन है, नहीं एक ही है, सचित आनंद तीन नहीं है एक ही। तो ये तीन कैसे कहा गया? और ये कहा गया क्योंकि एक ही है, सत एक है, चित भी एक है और उसी एक, माने तर्क वितर्क झूठ मूठ का बाल का फाल उड़ाते हैं। सत और चित आनंद भगवान तीन प्रकार के, जगत में जितना जो कुछ है यह तीन भागों में विभक्त हो सकता, सत चित और क्या, सत माने सत का
माने ज्ञान
और चित माने ज्ञान और तीन ही चीज, यदि सब विश्व को भाग कर दिया जाए तो ये तीन ही चीज, किसी की सत्ता होगी और उसमें ज्ञान कुछ जरूर होगा और उसमें आनंद कुछ होगा, इसके अतिरिक्त और कोई सत्ता ही नहीं, ये तीनों चीजें सत्ता परिपूर्ण रूप में कृष्ण के अंदर, सत्ता माने सत्ता और चीज माने ज्ञान और आनंद का आनंद ही है सच्चिदानंद। ये तीन ये वृत्तियां हैं पराशक्ति की, उसमें जो चित कहा ना वही एक ही शक्ति पराशक्ति की तीन वृत्तियां हैं। कैसे? आनंद से लादी, आनंद अंत से लादी और सब अंत से संधि और चित अंत से सब, उनकी शक्ति तीन प्रकार की, सब चित तो चित अंत से संधि, संधि माने ज्ञान, ये ज्ञान ही पीछे भाव के रूप में परिणत हो जाता। कैसे? जैसे मैं हूं, मैं कौन हूं? किसी का पुत्र, किसी का पति, किसी की पत्नी, ये सब भाव है। यही भाव होने से तब प्रेम होगा, जब तक यह संबंध रूपी भाव नहीं होगा, यही भाव अंत में जाकर के कृष्ण के प्रति लागू होने पर ये आनंद का रूप चीज अंग से संवेद, संवेद माने नॉलेज ज्ञान, प्रारंभ से लेकर के अंत तक जितना भी ज्ञान होता है ये संवेद, यानी ज्ञान कभी माने लादनी संधिनी संवेद स्वये को सर्व संशय लाभ तापकारी मिश्रा कोई नो गुण बद। इस जगत में वही संबित संधुनी लादिनी किसी न किसी रूप में इस जगत में भी है, यहाँ पर इस जगत में लाग ताप सारी जो सुख का कारण है वही दुख का कारण हो जाता है। पुत्र नहीं था तब दुख है, पुत्र हुआ आनंद हुआ, अब पुत्र कुपुत्र निकल गया तो क्या हुआ? अधिकांश रूप में ऐसा ही। उसी तरह से सभी कुछ इस जगत में पहले सुख के लिए कारण होता है, अंत में दुख का कारण होता है, या एक ही समय में मिश्रा मिश्रा मैंने सुख और दुख दोनों का कारण। श्रीमद्भागवत में बतलाया चित्रकेतु उपाख्यान में, पुत्र हुआ तो आनंद हुआ, मर गया बड़ा दुख हुआ,
सब दुख
हुआ। इसी तरह से सब जगत ये भरा पड़ा। इस जगत में पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से राग माने आनंद और ये सब कुछ नहीं है। इस जगत में तो गुण युक्त गुण माने सत्व रज और तम ये तीनों से मिले हुए, विशुद्ध रूप में शुद्ध तत्व का कोई पता नहीं। उस जगत में दुख क्या है सुख क्या है ये कुछ लोग नहीं जानते। उस योग में इस योग में तीनों शक्तियां विशुद्ध रूप में अवस्थित होती हैं और कृष्ण में होती हैं। वहां पर ये माइक गुण दुख शोक इत्यादि उसमें कुछ भी नहीं है। और ह्लादिनी आनंदांश में ह्लादिनी बतलाया उस शक्ति को, पराशक्ति को, कृष्ण के ह्लादे का से नाम कृष्ण को आनंद प्रदान करती है, इसलिए उसका नाम है ह्लादिनी। ह्लाद प्रह्लाद प्रकृत रूप से आह्लाद आनंद। हम लोगों में क्या है, जड़ विषयों की अनुभूति करके या जड़ वस्तुओं को पा करके हमारे हृदय में ह्लाद होता है और थोड़ी देर के बाद में वो वस्तु दूर हो जाती है तो सुख का कारण। वहां पर ऐसा कभी नहीं होता, वहां पर भी शुद्ध रूप में सत्य में रहता। उस ह्लाद का काम ही है क्या, कृष्ण को आनंद दे। कैसे आनंद देता है तो वो उसी के लिए बता रहे, सही शक्ति द्वारा सुख आस्वाद आत्मा, कृष्ण उसी ह्लाद शक्ति के द्वारा आनंद प्राप्त करते हैं। सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्वाद, कृष्ण सुख स्वरूप स्वयं है और उसी शक्ति के द्वारा फिर और भी सुख का साधन कर नवनुमायनंद भक्त बने सुख जीते ह्लादिनी। इस साधनी के कारण ही ह्लादिनी शक्ति के माध्यम से जीवों को भी यह सुख तीन प्रकार का हुआ। जड़ जगत में जड़ वस्तुओं की प्राप्ति से और सानिध्य से जो सुख होता है वो जड़ सुख का मेटेरियल सुख का, और जीव के स्वरूप में एक आनंद है वो बहुत थोड़ा है, आंशिक रूप में कण के रूप में है, उसको कहते हैं ब्रह्मानंद। और किस जगत में कृष्ण के सानिध्य में कृष्ण की सेवा से जो सुख पाया जाता है उसको कहते हैं श्रीमानंद। इसके तीन रूप सबका भी वैसे तीन है। उस जगत में जीवों का जो स्वरूप होता है शुद्ध तत्व का होता है, उसका जन्म मरण नहीं होता, और जीव स्वरूप में वो उसका स्वरूप बहुत अणु है, वो माया के द्वारा आच्छादित किया जाता है और कृष्ण के सम्मुख रहने से माया में नहीं पड़ता। और अभी हमारा जो स्वरूप है ये पंचभूत का स्वरूप है, वही आत्मा को पड़ा। अभी दो स्वरूप है, एक होता है पूर्ण शरीर, दूसरा होता है दुख स्वरूप। पूर्ण शरीर क्षिति जल पाव गगन संग पंचरसी तरह अनंत, ऐसा भगवान ने इसको बनाया है मिट्टी जल वायु इत्यादि लेकर। जैसे एक मूर्ति भी बनाते हैं तो मिट्टी जल इत्यादि लगता है, मिट्टी या धूप भी चाहिए, अब भीतर में खोखला भी चाहिए, और फिर उसको आग में देकर के पकाते भी हैं इस तरह से उसमें भी पांच तत्व भगवान ने अद्भुत रूप में इसको बनाया और उसमें ऐसी बुद्धि मम की लगा दी, मैं की, मैं यही शरीर, इसका तृप्त करना जानते भी हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं कि मैं यह शरीर नहीं मरूंगा तो कभी इसकी आसक्ति और मैं हूं ये भाव नहीं जाता। कांटा लगने से हम हजार आदमी मुक्त हैं, कभी कांटे में हम हटते जाए और दुख और अपमान के लिए ये ऐसी है। तो वो जो शक्ति है लादनी शक्ति, कृष्ण को वह लाद करती है, आनंद को बढ़ाती है और जीवों को भी कृष्ण से आनंद दिलाती है उसकी सेवा में। कैसे लादनी को शक्ति है, रूप कैसे हुआ, तो रूप हुआ ऐसे लादनी सार अंश प्रेम न, लादनी सार अंश सार प्रेम न, एक लादनी शक्ति है ना, ये आनंद है और उसमें संबित जो थी ज्ञान अथक भाव ये मिल करके शक्ति हुआ, ये वृत्ति हुई, ये पहले मन में है भाव, पहले कोई भी चीज की रूपरेखा होती है वो भाव से उत्पन्न होती है भीतर में अंतर में और फिर उसका रूप ऊपर से दिया। जैसे एक कलाकार है उसको चित्र बनाना है तो चित्र कैसे बनाएगा, पहले मन में विभावित होगा, मन में बनाएगा, जब मन में स्थिर कर लिया कि ऐसे हम आंख ऐसे नाक कान ये सब हम करेंगे, ये मैंने प्रौढ़ कलाकार सत्य कलाकार नहीं, सच्चा कलाकार तो ऐसे होते हैं जो शंकर बनाने बनाते बनाते दंदर गढ़ लिया, शंकर की मूर्ति बना रहा था और बनाते बनाते चेहरा बंदर जैसा हो गए, कह दिया ये बंदर ही थी बस बंदर हो गया, ऐसा नहीं, प्रौढ़ कलाकार है, मन के अंदर में भावना करना ही कि हमको ये चिंता और ठीक उसी को बाहर निकल, जैसे हो गया तैसे नहीं, ये कलाकार का काम नहीं, ये तो जैसे हो गया तैसे ये नहीं, कलाकार वो है जो अपने मन की वृत्तियों को एकदम जगत में वो कला, तो वैसे ही ये हलाने तो सकती है रूप कैसे धारण किया उसके लिए बदला तो संधुनी शक्ति ने भाव मिश्रित हुआ, दोनों मिलकर के हुआ शुद्ध सत्व रूपी भाव, वो बहुत रूप में विभक्त होकर के जीव हृदय ने प्रकटित किया। अब उसमें स्थायी भाव उसके ऊपर में
भाव
विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी मिलकर के एक रस को प्रकट किया, उस रस का नाम हुआ प्रेम, वही प्रेम आगे बढ़ करके स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव और महा, ये महाभाव रूप धारण करता है और वही रूप धारण करके गोपी होता है लाखों कोटि, और लाखों कोटि गोपियों का भाव समय से मिल सके एक राधा जी, यही राधा जी लादनी सार अंश प्रेम का नाम आनंद चिन्मय रूप रसे राख्या, आनंद और चिन्मय, चिन्मय मैंने वैसा भी, ये दोनों मिलकर के इसका नाम प्रेम हुआ, यही प्रेम आगे बढ़ करके प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग होकर के महाभाव हुआ। अनुराग कब गया, राग हुआ कब, जब उसके भाव नित्य नवीन कृष्ण के रंग में रंग से चले रहते हैं तब हुआ ये राग, और प्रतिष्ठा नवनमय मान होता है तब उसको कहते हैं अनुराग, अनुराग जब स्वसंवेद दशा को प्राप्त होकर के जावद आश्रय वृत्ति में उपस्थित होता है तब होता है महाभाव। यहाँ तक दोनों मिले हुए संगीत और भ्राजन यही महाभाव रूपा राधा शास्त्र का, यही महाभाव ही श्रीमती राधिका जी का रूप। ये एक ऐसा चिंतामणि है भाव कि कृष्ण की समस्त वांछाओं को पूर्ण करता है। ये चिंतामणि है। चिंतामणि किसको कहते हैं? चिंता हो और साथ साथ में कोई भी काम ना करो उसे जरूरी। जैसे जागतिक एक चिंतामणि के लिए कहते हैं, मान लें कि कोई सदा व्यक्ति किसी जंगल में आपके करता हुआ पहुंचा, गमीन जंगल में एक सुअर को देखकर उसके पीछे घोड़े को छोड़ दिया और वह सुअर छिपता हुआ भागता हुआ टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ सभी जंगल में उसे ले गया। शाम हो गई, जब शाम हो गई तो उसका चंद्रकार हो गया, चंद्रकार में वो विलीन हो गया। अब उसको जब नहीं देखा तो देखा अरे सूर्य तो अब डूब गए, अंधकार हो रहा, अब कहां जाऊं, कोई पथभार कुछ नहीं और जंगल में सिंह भालू इत्यादि हाथी ये सब गर्जन करने लगे। अब डर से मारे सब बड़ी जोर से प्यास और भूख लगी, सब करके चूर हो गया। इतने में वन में एक वृक्ष के नीचे पहुंचा। वो वृक्ष कौन था? कलकतरु माने कोई चिंतामणि संत, समस्त इच्छाओं को कल्पनाओं को पूर्ण करने। तो वहां पर पहुंच करके सब करके देखा, आया है यहाँ पर यदि पीपल जल हमको मिल जाता भाई प्राण निरल होता। इतने में देखा लेकिन पीपल पानी आ गया, पानी तो मिला क्यों, तो यदि कुछ खाने को मिल जाता तो इसे मैं देखा कि खाने के लिए जो कुछ आता था वही आ गया। बड़ा प्रसन्न खूब खाया पिया। अरे यदि एक पलंग होती है होता तो मैं जरा भी शाम कर दो उसी समय मैं पलंग वहां पर आ गया, उस पर भी शाम कर। जब खुलासा तो लिया कहा था सुनिध खुली फैमिल का रात्रि बाघ सिंह गर्जन कर रहे कोई सिंह आ जाए। इसने ससुर सिंह जब आ गया तो अरे कहीं तुझे खा ना दे, ये तो जागतिक चिंतामणि या कल्पतरु का ही है। अब अपराधिक चिंतामणि की चिंता कीजिए, अपराधिक चिंतामणि कौन है? यही है महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधिका जो कृष्ण रूपी परम पुरुष की समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, जो कुछ भी चाहेंगे ना वैसा, और किसी में क्षमता नहीं, न वैकुंठ में किसी को है और न तो ब्रज में है न कहीं है, बस एक हाथ श्रीमती राधिका में ही ऐसा नहीं उनको पूर्ण करता है। महाभारत उभय मध्य राधिका सर्वाधिका सर्वथाधिका महाभाव स्वरूपेयम गुणे अति बड़ी है। उभय जितनी ब्रज में गोपियां हैं उनमें समस्त गोपियों में राधिका और चंद्रावली गो सबसे श्रेष्ठ, रूप में गुण में सभी सब, और उन दोनों ने भी महाभाव स्वरूपा यम यम मैंने राधिका जी महाभाव स्वरूपा है, गुणों में सबसे अत्यंत श्रेष्ठ ये है, चंद्रावली से भी श्रेष्ठ है, कृष्ण की अत्यंत वल्लभा है, उनको भी मुग्ध कर देने वाली है, इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ मानी। कोई महिला मत महिला वही महाभाव स्वरूपा इस रूप में सुनिए, प्रेम स्वरूप देव प्रेम रखा कृष्ण साधारण रूप में आत्माराम है और आप सकाम है, उनमें कोई भी कामना नहीं, उनकी समस्त कामना परिपूर्ण है, उनको किसी चीज का अभाव नहीं। हम लोग जितना भी पूर्ण हो हम लोगों में अभाव रहेगा ही, कुछ न कुछ अभाव रहेगा। कोई भी ऐसा जगत में नहीं है जो जन्मा है उसमें वो अभाव रहेगा, चाहे वो कोई विश्व का सबसे श्रेष्ठ धनी भी हो जाए, एक दिन मरना पड़ेगा, मृत्यु का अभाव उसमें नहीं, रोग का अभाव नहीं। अभाव से ही उसके शरीर का दर्शन हुआ है, इसलिए जरूर है। और जीव भगवान का अंश है, इसलिए यह कभी पूर्ण होगा नहीं, यह अभाव बना, किंतु भगवान पूर्ण है, उनसे जितना जो कुछ भी निकलता है वो भी पूर्ण है, और जो निकलने वाला जो है वो भी पूर्ण है, और भगवान निकले हुए हमें पर भी पूर्ण है, इसलिए भगवान का पूर्ण। किंतु जीव कभी भी पूर्ण नहीं है। तो प्रेम स्वरूप दे, किंतु कृष्ण में कोई भी इच्छा और वांछा नहीं, ये बात ठीक है, उनको कभी भी कमी नहीं है, उनको किसी से डर नहीं है, उनको शोक नहीं है, मोह नहीं है, कुछ भी नहीं, तभी एक कमी है। क्या कमी है? नहीं, कमी यह है, जब कोई भक्त उनको सेवा करने की कोई वासना करता है तो उसको भोगने की इच्छा उन्मूल हो जाती है। मान लिया कि मुझे प्यास नहीं है, और एक छोटा सा बालक कोई बाल्यही लड़की छोटी थी, बड़े प्रेम से दादू 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 कहती थी या बाबा कहती थी, तो अच्छा सुंदर शीतल जल लाते महाराज या शांति, मैं क्या करूँ, प्यास नहीं है, ऐसा कहूँ तो लोग कहेंगे जैसे ये औरत थी, इसे जब लाई हमने हाथ से ले लिया, प्यास पी नहीं है, तभी मुख से लगा दिया, एक घूंट पानी पी लिया। ऐसे ही कृष्ण में किसी चीज की कमी नहीं है, किंतु उनका यही स्वभाव, ये जथा मांग प्रपद्यन्ते ताम तथैव, जो जैसा हमारी सेवा करने की अभिलाषा करता है उसकी उस इच्छा को उसी रूप में पूर्ण कर, उसकी इच्छा हुई ये साधु को सुना, एक लड़का था, उसके पिताजी थे, पिताजी ने पिताजी ठाकुर की रोज सेवा करते थे, सालग्राम ठाकुर थे, उनकी सेवा करता था, रोज 5-6 मोटी मोटी रोटियां और सब्जी, कभी दाल, कभी दही, कभी माखन, कभी मिस्टी, वो ठाकुर जी को भोग लगाए, भोग लगा करके और ले आकर के उतार करके भोग प्रसादी, और फिर अपने सब लोग परिवार के से खाने की। एक दिन वो किसी 2-4 दिन के लिए बाहर जाने लगा, तो उसका छोटा सा बच्चा था, बच्चे को बुलाकर जो बेटा मैं जा रहा हूँ, आज कोई पुजारी मिला नहीं, तो मेरे उपस्थिति में तुम ही ठाकुर को पूजा कर, और ये भोग ठाकुर जी के सामने रख देना, उनको खिलाते रहे, कोई तरह की कमी नहीं है। ये कहकर वो चला गया, उसकी मैया ने रसोई बनाई, और रसोई बना करके वो रोटी रोटी और सब्जी दाल ठाकुर जी के सामने रख दी, रख करके खड़ा हो गया, ठाकुर जी भोग को आरोगिए, 3 बार कहा, फिर आंख बंद कर लिया जैसे उसके पिताजी करते थे, और ताली बजाई और उनको आवेदन करके वहीं पर खड़ा रहा, 2-4 मिनट हो गए, फिर आंख खोला तो देखा जी उसको कुछ खाया नहीं, जैसा था कैसा पड़ा है, फिर उसने कहा जी ठाकुर जी आप रुष्ट क्यों हैं, पिताजी तो आपको देते थे खा लेते थे और मैंने भी आप खाते नहीं, आप पाली, फिर आंख बंद किया देखा जी खा ली, फिर आंख खोला तो देखा जी नहीं खाए, तो उसको बड़ी गिलानी, मैं बालक हूँ और देने नहीं आता है इसलिए नहीं,
तो बिलख बिलख करके रोने लगा कि प्रभु हमारे देह को आप खा रहे हैं। जब रोने लगा तो अंतर से उसकी तो सचमुच में देखा जी ठाकुर जी ऊपर आए सालग्राम और वहां पर बैठ गए और हाथ उसमें से निकल आए और निकल करके ठाकुर जी ने उसे उसके सामने देखा और खा लिया। जब पूरा खा लिया तो इसने हाथ बुला दिया जिसके बाद ठाकुर जी अपने आप सिंहासन पर अब ये ऊपर से चला गया खाली खाली सुन मैया को दे दी थाली। अरे रोटियां कहाँ गई प्रसादी प्रसादी क्या वो तो सब ठाकुर जी ने खा लिया। ऐसे दो तीन दिन हुआ उसकी मैया भी बड़ी आश्चर्य थी। अब तीसरे दिन सीता जी मैया ने कहा ये तुम्हारा बेटा कैसा तुम आता था तो प्रसाद ले आता सब तो प्रसाद आता ही नहीं सब कहता कि ठाकुर जी खा ना जाने कौन खा गया। तो वो आकर के अच्छा आज दो मैं छिप करके देखूंगा तो छिप करके देखने लगा तो आज ठाकुर जी आ नहीं रहे। बच्चे ने कहा आज ठाकुर जी आ क्यों नहीं रहे आज क्या बात हो गई। सीतारण से बतलाया ये तुम्हारे पिताजी छिप करके देख रहे हैं इसने दिया पिताजी। जब ये लौट करके गया फिर ठाकुर जी ने खा लिया खाली खाली क्यों इतने दिन तक वो नहीं खा आज खा लिए तो सब बिगाड़ने लग गया। और ये सर लड़का उनको दिया ठाकुर जी ने ग्रहण कर इसी प्रकार सभी सरलता से प्रेम से देने पर वो ग्रहण कर कुटिल चित्त होने पर हम लोग का भी चित्त कुटिल और बिना प्रेम से नहीं गए। तो पिता का अंत में पिताजी को तो किया हुआ खाया नहीं और उन्हें हस्तक्षेप किया पीछे का जन उनका किया हुआ सर्वनाश वो पूरी के पास में अलावनाथ में ऐसा ही देखा जाता उनका सर्वनाश बनता ही कर दिया। तो प्रेम जहां रहेगा उनको भूख होती है जब सुधा के मुख हर में सप्त में भूखे और नहीं तो यही ब्रह्मवादियों के लिए आत्मारा आप तो काम उनको कोई काम नहीं सालक राम जैसे बैठे हुए और नहीं तो सनातन गोस्वामी के यहाँ कच्ची अभजली जैसी तैसी खिचड़ी ही मांग करके अरे कहेंगे तुम थोड़ा सा नमक तो रोटी के साथ में दे दो ये प्रेम की बात है। तो ऐसा प्रेम होना बड़ा भारी कठिन है। तो कृष्ण को कोई भी कामना नहीं है किंतु राधा जी की या गोपियों की सेवा की वासना को देख करके उनमें उस चीजों को ग्रहण करने की लालसा होने से ही भगवान का अवतार होता है। अवतार का कारण भी यही है भक्तों की सेवा को प्राप्त उनके अंदर में भक्तों की सेवा करने की लालसा होती है। इसलिए हम लोग के साधन में भी ऐसी यदि हो ठाकुर जी की हम सेवा करेंगे तो ऐसा ही एक ब्राह्मण से जन्म था दक्षिण देव नाम था गोपाल वो महाप्रभु के संपर्क में आकर के भक्त बन गए नारायण के भक्त घूमते धामते वे पिता के मृत्यु के बाद में परलोक अवन के बाद में उत्तर भारत में आए और गोमती के निर्गम स्थान पर पहुंचे गोमती माने जहां पर की सालग्राम की शिलाएं मिलती है गंडकी नहीं नहीं तो वो गंडकी नदी जहां से निकलती है वहां पर बड़े सुंदर सुंदर सालग्राम निकलते हैं। सालग्राम का चिन्ह है उसमें सोना लगा रहे और चक्र उसमें रहता है और सोना भी लगा रहेगा स्वाभाविक रूप में। तो वहां पर गए तो एक बड़ा सा उनको सालग्राम उसको लेकर के वृंदावन में आए और वहीं पर उनकी उपासना कर रहे हैं झूलन का दिन था सभी लोग ठाकुर जी को झूला रहे हैं इनकी भी बड़ी इच्छा हुई है, ठाकुर जी आपको झूले में कैसे झूला, आपका श्रृंगार कैसे करूं। बड़े खेद होकर के सो गए रात, सालग्राम किला थे उनको क्या श्रृंगार करेंगे, उनको माला ऊपर से रखती तुलसी ऊपर नीचे रख दी, बस यही किला श्रृंगार। तो रात में सोए तो उन्होंने कहा अरे तुम्हें तुमको दुख हो रहा है, हमको श्रृंगार करके चढ़ाएगा, इसकी जाओ देखो जी हमारा कितना सुंदर रूप है, अभी जाओ अभी पशुम की नीत खुली। और जाकर के उन्होंने सालग्राम की बिटिया को, उन्होंने बिटिया को ऊपर से कपड़ा हटाया, देखा जो सैनिक किए हुए कौन वही सालग्राम जी ही। जब देखा और उलट करके ऐसे किस्त सोए हैं, एक मुख मंडल यहाँ पर बंसी के लिए ऐसे हाथ किए हुए और कमर बंकी और पैरों पर पैर रखे हुए, देख करके आश्चर्यचकित हो गए, प्रेम में भर गए, खड़ा किया, देखा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन तीनों विग्रहों का की आकृति उसमें धरी हुई है, गोविंद जी के चरण, मदन मोहन जी के चरण और गोविंद जी के बस्तक तक और गोपीनाथ जी का मुखार एक विग्रह के अंदर उसका श्रृंगार किया और झूले से रख करके और उसको झुलाया दूसरे कृष्ण प्रेमेर, प्रेमेर स्वरूप देव प्रेमेर भावी कृष्ण प्रेयसी से जगत ये राधा जी कौन है, वही जो सेवा करने की प्रवृत्ति है, वो प्रेम से लेकर के महाभारत वही महाभाव का स्वरूप है, ये कोई स्तोम नारी या महिला या स्त्री या किशोरी नहीं है, कोई भी किशोरी भी हो सब उसमें कृष्ण के चित्त को परिपूर्ण रूप से पूर्ण नहीं कर सकती, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी नहीं कर सकती, सत्यभामा और रुक्मिणी भी नहीं कर सकती, समस्त गोपियां भी नहीं कर सकती है, इसलिए सब गोपियों को छोड़ करके एक राधा को लेकर के वो अंतरित्व से रास्ते, इसलिए कृष्ण की प्रेयसी से श्रेष्ठ प्रेयसी आनंद चिन्मय रस प्रतिभा आनंद चिन्मय रस प्रतिभा, ये गोपियां क्या है आनंद चिन्मय रस, उसकी प्रतिभावित मूर्ति स्वरूप प्रतिभाविता भी सार्वीर्य एव निज रूप तया कला, ये कृष्ण की कलाएं हैं, कलाएं मैंने क्या अंश नहीं, कलाएं मैंने उनकी स्वरूप पर सच्चिदानंदमय जैसे कृष्ण है निज रूप कया कृष्ण का जैसे सच्चिदानंदमय उनकी ये जो कलाएं हैं गोपियां और उन्हें ये सबसे पठाना है वो कृष्ण स्वरूप ही कृष्ण जैसी ही प्रतिभाविता प्रतिभावित मैंने क्या हृदय में विभावना के द्वारा उनकी सेवा की विभावित वो अपने रूप के समान ही उनकी कलाएं अथा तो शक्तियां हैं और सप्त में कृष्ण की भावना से विभावित कैसे हैं ये आगे बतलाएंगे कैसे विभावित गोलोक में वो कृष्ण आदि पुरुष जो गोविंद हैं निवसत अखिल आत्मभूतो इन सब के साथ में क्रीड़ा करते हुए विलास करते हुए जो नौ नित्य वृंदावन में स्थित हैं वो कृष्ण वो गोविंदमादिपुरुषम तमहमादिपुरुषम माने अपने रूप के समान प्रतिभावित वो मूर्तियां ये गोपियां हैं। जब ये कोई स्त्री इत्यादि नहीं है उनके साथ में नित्य निवास करते हैं जो लोग वृंदावन धाम में वो गोविंद जो है वो आदि पुरुष है उनकी मैं वंदना भजन करता हूँ। महाभाव है चिंतामणि का वह महाभाव कैसा है चिंतामणि सब कृष्ण जैसा चिंता करते हैं वैसा ही हो जाता कृष्ण जैसा चिंता उन्होंने इच्छा की ये राष्ट्र हो साथ ही साथ में आराधना शिक्षा की आराधना जी की श्रेष्ठता संपादित हो पर कैसे श्रेष्ठता संपादित हो इसी का नाम है राग श्रेष्ठता संपादन में और कृष्ण की सेवा वहां पर सब प्रति मिलकर चिंतामणि का चिंतामणि जी नहीं चिंतामणि का किसी एक वर्ग व्यक्ति को एक चिंता मिली मिली और किसी को दस मिली तो श्रेष्ठ कौन हुआ दस बार कौन हुआ बच्चा
बोल
कैसे दस वाला भी जितना है और एक वाला भी चिंतामणि है वो चिंतामणि से कहा कि आप लाख रूप में प्रकाश तो लाख बन जाए अगर ये आप एक ही बने रहिए और सब इच्छा पूर्ण करेंगे इसलिए लाख बराबर वो एक ही इसीलिए हरिनाम में ऐसा बताया गया राम नाम में कारण
नाम चिंतामणि
ये नहीं राम राम की रमी रामे सहस्रनाम
राम नाम वरानने
सहस्रनाम भी तुल्यम माने क्या भगवान का एक नाम और सहस्र नाम दोनों में कितना अंतर है अरे एक नाम से जो होगा
वही सब
इसलिए वहां पर सभी पूर्ण है सभी चिंतामणि स्वरूप है सभी रस की दृष्टि से कुछ विशिष्टता है कृष्ण नाम तीन राम नाम एक कृष्ण नाम उसके बराबर सहस्त्र विष्णु का नाम जैसे विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं विष्णु का 1000 नाम एक राम नाम के बराबर और तीन राम नाम बराबर होगा एक राम नाम कहने से संसार से वो पार कर देंगे भव सागर और कृष्ण नाम कहने से संसार से पार करके और सब कृष्ण प्रेम दे इसलिए वो तारक और तारक माने तारने वाले और पारक माने प्रेम देने वाले कृष्ण का नाम तारक और पारक दोनों है और राम नाम तारक किंतु जब राधा रमयती श्री राम जब होगा तो वो उस प्रेम से भी अधिक कुछ देने वाला बन जाए तो वो पारक से भी अधिक पारक हो जाए तो कृष्ण वंशा पूर्ण करे यही कार्यता महाभाव ये उज्जवल मणि में ये सब उदाहरण के साथ लिखे हैं कि कैसे कृष्ण की इच्छाओं को चिंतामणि होकर के पूर्ण करते हैं। ललिता सखिता काय बिंदु ललिता इत्यादि सखियां उनकी काय बिंदु काय भी माने अलग अलग उनके शरीर मान राधा प्रेम राधा प्रति कृष्ण स्नेह राधा के प्रति जो कृष्ण स्नेह सुगंधी पूर्वक ताकि सुगंधी देह उज्ज्वल कर राधा जी के अंगों का वर्णन करते हैं कि क्या है हमारे अंगों में मट्टी जड़ अग्नि वायु और आकाश मनी सुन ये पांच चीजें हैं जी शरीर। राधा जी के अंगों में क्या चीज है, किस चीज से बनी है?
महाभाव।
महाभाव मानी कृष्ण के प्रति जो भाव है वही महाभाव का है। वो कृष्ण भावित जार से इंद्रिय था, कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है, स्नेह है, मान है, प्रणय है, राग अनुराग भाव महाभाव, वो एक एक अंग श्रीमती जी का। जैसे कपड़ा है, कोई कपड़ा सूती है, कोई नाइलॉन होता है ना,
नाइलॉन,
कोई ऊनी कपड़ा होता है, कोई रेशम का कपड़ा होता है, कोई आजकल कितने कितने तरह के ये कपड़े। उसी तरह से राधिका जी का जितना शरीर है वो सब महाभाव का ही सभी बना हुआ। राधा प्रति कृष्ण स्नेह सुगंधी रूपम रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रेमान भोज मकरंद स्तवराज स्तवराज है। स्तवराज माने क्या?
समस्त स्तवों का राज।
इतना रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्तव बनाया है, उसका स्तव का ये राजा है। और स्तव पर के स्तव स्तुति करने से जो फल हो स्तवराज राधा प्रेमम भोज मकरंद है। इसका यह राधा जी को कृष्ण को दोनों को प्रसन्न कर देता है, इसलिए इसको स्तवराज कहते हैं। इसमें ये रघुनाथ दास गोस्वामी ने वर्णन किया है किसके लिए? साधकों के लिए। कभी भी जड़ीय भाव राधा जी ने कभी आरोप कोई न करे और इसी रूप में उनकी भावना है। पहले तो साधन में राधिका जी के चरण में जितने चिन्ह है न उसको पहले स्मरण कर होगा।
इतने गर्मी है कि
चरण कमलों की मृदुता और कुमलाई और लालिमा की चिंतन करे, ये तो बहुत पीछे की बात है। पहले ये भी छोड़ो, पहले हरि नाम करो रुचि के साथ में, प्रीति के करी उनकी कथाओं का श्रवण करे और कुछ साधन भजन करे। हम लोग सब करते हैं अपने लिए, अभी करना सीखे किन के लिए? भगवान के लिए करना। अभी बाजार कभी जाते हैं सवेरे किसके लिए? अपने लिए कर। अभी भगवान के लिए बाजार करना सीखिए, ये कैसे भगवान के लिए बाजार करना है? भगवान के लिए अच्छे अच्छे फल, अच्छी अच्छी सब्जियां, अच्छे अच्छे कपड़े, सब कुछ उनके लिए हर बनाए ना, तो चिंता करिए हम इसमें ठाकुर जी का घर सबसे उन्नत और सबसे अच्छा किस रूप में बने। ठाकुर जी की सेवा के लिए हम लोग सेवक हैं और हम के लिए ये सेवक ठाकुर जी के लिए ऐसे करते 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 ये अर्चन मार्ग है। फिर भाव मार्ग आएगा तब इसके बाद में प्रेम आएगा, तब ये सब चिंता है। ये कारण इसलिए इसको सुन करके किसी जन्म जन्मांतर में यह बीज हो जाए अभी भजन करते 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 तो फिर यही विराट मही रूह का रूप धारण करें, इसलिए इसको दे रहे। इसको चिंता मणि समझना ये सब ये कहती है कि चिंता मणि यदि चिंता मणि के रूप में अपने हृदय में इसका हमने बीज बो दिया और ऐसे ही साधन भजन करते रहे तो उसके लिए संसार सिद्ध हो जाए और कृष्ण भी वशीभूत हो जाएंगे। इसीलिए कह रहे राधा के प्रति कृष्ण का जो स्नेह है वह राधा जी के लिए सुगंधी उस बर्तन के समान है। उस बर्तन में क्या उबटन स्नान करने के पहले तेल या उबटन लगाया जाता, इसलिए सुंदर बनने की, त्वचाओं को कोमल शक्तिशाली और सुंदर बनाने के लिए ये सब चीजें लगाए। विशेष करके बच्चों को वो कौन सा तेल
ऑलिव ऑयल
लगाते हैं, किस लिए? या काली लड़की हो तो पहले ही से चिंता करते हैं कि इसको कैसे सुंदर बनाए। कलकत्ते बंगाल की लड़कियां जो कुछ काली होती हैं या लड़के, वो रोज गंगा में स्नान करते हैं, किस लिए? वो गंगा का जो पानी है ना मठमैला धन का, वो यदि लगेगा ना बार बार स्नान करते करते काली में क्या उसमें क्या गुण है, वो बुरा बना देता। तो लोग स्नान कर तो ऐसे ही, और वहां पर लोग बिना तेल लगाए हुए नहीं करें, तो इसलिए ये कह रहे हैं कोई भी हो व्यक्ति अपने सौंदर्य को निखारने के लिए बंगाल अबाटा कहते हैं, चाहे वो सरसों का हो, कुमकुम उसमें मिला करके हो, या किसी का उपचार हल्दी सुना हल्दी और आटा मिला करके उसमें कुमकुम लगा सकते हैं, उसमें कोई सुगंधी चीज लगा दें, इस तरह से वह आटा तो कहते हैं कि कृष्ण उसको लगा करके नल साफ हो जाता है, उसका तेल भी भीतर में चला जाता है हृदय में, और उसको लगाने से शरीर का मालिश भी हो जाने से शरीर की क्लांति भी दूर हो जाती है सब प्रकार की। और इसके बाद में सब क्या करेगा, तो कृष्ण के प्रति जो कृष्ण का राधा के प्रति जो स्नेह है, ये उनका उपवर्तन है। माने क्या, राधा जी देखती है कि हमारे प्रति कृष्ण का स्नेह आनंद से फल जाते हैं। किसी पत्नी के लिए पति यदि उसको प्यार करता है तो उसका सबसे बड़ा त्योहार, और हजार उसको काका से देखो सोने के माल न रहना, 10,000 उसके लिए सेविकाएं नियुक्त करती उसकी सेवा के लिए, और इंद्र जैसा समस्त संपत्ति उसको दे दी, किंतु पति कभी उसके साथ में बातचीत नहीं करता है, न उसके पास आता है, न प्रेम करता है, खाने पीने की सब चीज की सुविधा कर दी, और पास ही में एक कुटी में रहने वाली एक स्त्री के प्रति वो प्रेम करता, ये दोनों में कौन सा अच्छा रहा, ये को वो प्रेम, यही राधा जी का कृष्ण का जो प्रेम है उनके लिए ये पहला उपवर्तन है। तो उनका शरीर क्या है वो आगे बतलाएंगे, ये तो उपवर्तन ही कृष्ण का राधा के प्रति में प्रमाण क्या रहा, राधाया प्रश्न राधा कृष्ण प्रणय विस्मृति लाभनी शक्ति स्मार्त एकावती भूत उदा देव देशम चैतन्य महाप्रभु की आज से लीला हो रही, जो जाएगा बिना रोए आएगा नहीं, जो जाएगा जरूर रोए, कुछ न कुछ जरूर हो, अभी देख करके आज कल लीलाएं होगी, अभी संन्यास का आएगा, संन्यास से पहले सबको लीलाएं, संन्यास के बाद सब समय रुला दे, यही महाप्रभु ये है कौन उसी के लिए ये बतला रहे। राधा कृष्ण प्रणय विकृति, कृष्ण की प्रणय की विकृति का नाम, प्रणय की दृष्टि क्या, लाभिनी और उसका महाभाव, ये महाभाव कृष्ण की राधा के प्रति प्रेम की विकृति माने प्रेम का ये फल है, विकृति माने वो विकृति मत्तम, तो यही राधा जी का स्वरूप, वही जब दो रूपों में है तब राधा कृष्ण एक रूप में चैतन्य महाप्रभु, ताते सुगंधी देव उज्ज्वल, इसलिए उनका प्रेम कृष्ण का राधा जी के प्रति स्नेह यही उद्भवन हुआ। उसके उनका शरीर सब समय सुगंधित रहता है। यहाँ यदि राधिका जी रहेगी चारों तरफ में वो पन राधा जी के गंध से भरपूर हो जाता है और कुछ समझ जाते हैं कि राधा जी यहाँ पर धारा सत्ता नाम की जने संक्षेप में थोड़ा सा जो बातें बतला करके आगे कारुण्यामृत धारा स्नान प्रथम अब तेल लगाए या ऑप्शन लगाए उसके बाद में स्नान करना जरूरी। सराधा जी तीन बार स्नान करते हैं, साधु संत लोग तीन बार करते हैं, सवेरे स्नान दोपहर को और स्नान तीन बार स्नान करते हैं। इसमें साधारण तर महिलाएं जो कि अभी जुआ है किशोरी है वो अंधकार में स्नान कर लेना ही अच्छा समझती है, कोई देखते नहीं, और स्नान नदी का स्नान सबसे सुंदर होता है धारा में जिसकी धारा चलती है। आजकल यमुना जी का धारा अब धारा प्रवाह नहीं है इसलिए गड़बड़ हो गया, तो भी पूर्व अभ्यास वशत और श्रद्धा के कारण लोग स्नान कर लेते हैं, नहीं तो कोई जान बुझ करके इसमें स्नान गंगा हरतार में जाओ यहाँ पर की पानी अधिक नहीं एक धारा उसमें अधिक पानी धारा वाला अलग कर दिया है और एक धारा हम लोग के मठ से बहती है उसमें पानी थोड़ा सा है पार है पानी एकदम निर्मल देख करके आदमी को इच्छा अधिक कर रहे महिलाएं तो सवेरे देखेंगे कि कोई आदमी अधिक नहीं है कुछ लोगों का भी आना जाना नहीं है उसी के बीच में जाकर के स्नान कर लें, इसलिए वो जाकर के सवेरे उसमें डूब करके इसको आपके साथ में धारा में स्नान कर ये बतला रहे हैं कारण नामित धाराए स्नान प्रथम पय की तीन संधियां होती हैं प्रथम कही तो मध्य की तो और
मध्यजीवन रक्त
और अंतिम किसो वह संधि जिसके बाद में नव किसो और इसके बाद में जौवन उद्गम होने से पहले एक व्यक्ति प्रथम स्थान कारुण्य कारुण्य किसो कहते हैं दूसरे के दुख को देखकर के हृदय का द्रवित हो जाना ही करना है, जिसका दूसरों का दुख को देख करके हृदय से हृदय द्रवित नहीं हो जाता वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य का प्राणी वो जंगली मनुष्य है, जिसका जितना ही अधिक द्रवित होता है उतना ही उसमें दया समझे और यही पिता का सौंदर्य है। करुणा का और अपराधिक क्षेत्र में इसका और भी व्यापक अर्थ है, बहुत व्यापक अर्थ। बचपन में कोई सुंदर या सुंदरी हो तो वो चंचल होती है या चंचल होता है, इधर उधर दौड़ते रहेगी कोई भी बात नहीं, कपड़े इधर उधर जा रहे हैं कोई भी बात नहीं, अभी छोटी सी बालिका है या बालक है घूम रहा है। हमने तो देखा 10-11 वर्ष तक बच्चे हम लोगों के समय में नंगे रहते थे कोई बात नहीं, लड़कियां भी वैसे ही 8-10 वर्ष तक कोई पैंटलून और कुछ पहनाने की कोई जरूरत, आजकल तो जन्म लिया बच्ची ने साथ साथ में उसको लगा देते हैं कपड़े से जिंदगी से छप गए, कल भी होता चला गया ना भावना ऐसी विकसित होती चली, भाई और बहन दोनों एक साथ में बैठ कर रेखा में जा रहे हैं दूषित नत्रों से लोग देखेंगे इसको उड़ा करके ले जा रहा है, इसके अतिरिक्त तो कोई भावना ही नहीं आएगी, गंदी भावना ऐसी लोगों की हो उस भावना से मत देखिए, इसको प्रेम की भावना से देखिए। तो बचपन में बाल्यकाल में सफलता रहती है, धीरे 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 सौगंध भाव आया उसमें अंग थोड़े से स्थूल होने लग गए और उसमें सुंदरता इत्यादि बढ़ते चली गई, अब ये जब वैष्णवी ने किशोर के दरवाजे पर देवी पर जो पदार्पण किया तो वो जो चंचलता थी अब धीरे धीरे केवल आंखों में आ जाती है चंचलता और शरीर की चंचलता स्थिर कर उसमें आंखें चंचल हो जाती है। ये राधा जी के लिए वर्णन करते हैं और लोगों के लिए और में साधारण उसमें काव्य इत्यादि में सकते उसमें कह रहे हैं उसमें करुणा बरसती है। करुणा माने क्या? आंखों से भी करुणा शरीर से मुखारविंद से करुण भाव यह रस का द्योतक है। ये प्रथम भाव में उत्पन्न इसलिए कहते हैं कारुण्य की धारा में करुणा की धारा में उस स्नान कृष्ण का उदन लगाया प्रेम का और वो कारुण्य में कर्म की चीज है कृष्ण दर्शन के लिए। अभी पूर्व राग हो रहा वैष्णव जी ने पहले तो ये पूर्व राग हो पूर्व मान कृष्ण के दर्शन करने के लिए अत्यंत उग्र मैंने व्याकुलता अंदर आतुरता व्याकुलता उसने करुणा रखती है। इस करुणा के लिए कार्य करुणा की धारा में पहले द्वारा स्नान करती और फिर और थोड़ा सा अपन मध्य में कारुण्यामृत अब और भी कुछ बढ़ गई तब धारा मध्यम स्नान इसके लिए बताया कि वो काम काम अधिक रहता है और लोगों का आगमन नदी के घाट पर अधिक हो जाने से वो बाहर में निकल करके नदी के किनारे स्नान न करके दास दासियों के द्वारा जो पानी लाया गया है घर में ही बाथरूम में बैठ करके गोपनीय स्थान में बैठ माने क्या कृष्ण की राधा जी की जो सहेलियां हैं ललिता विशाखा चित्रा रूप मंदिर इत्यादि कृष्ण का धुन वर्णन कर रही है दोपहर में सब बरह आत्मीडन नटवर कर्ण कर्ण कारण विकृत भाषा कर्ण कपितम दय जयंती समालम अरंध्यान ब्रेम अतर सुधया ये श्लोक का वर्णन करते हुए और कृष्ण के गुणों का वर्णन कहो इन आंखों का एकमात्र जब पाठ फल कृष्ण दर्शन के अतिरिक्त और कुछ नहीं जो कृष्ण पंथ में बांसुरी बजाते हुए सखाओं से परिवेषित होकर के गायों की मंडली लेकर चल रहे हैं और बलदेव प्रभु के पीछे पीछे बंसी बजाते हुए मुस्कुराते हुए अपनी आंखों से कथा छोड़ते हुए पंडित जी इन आंखों का यही फल है इनका यह दर्शन किया जाए और यदि जन्म होता तो मृदी होकर के आने से अच्छा उनके पति भी उनको लेकर के कृष्ण दर्शन के लिए प्रेरणा दे चलो चलो दर्शन करने के तुम्हें कोई क्या कह देगा हम तुम्हारे वो जी फटे थे प्रणय फटते कृष्ण की तरफ हमें देखती और पति उनको ये कर उनको ये देते हैं और सब देते हम लोगों के पति और सब लोग बड़े बाधा देते हैं इसलिए मर करके मृगी होना आता है जो कृष्ण का दर्शन सब अरे आकाश में बादल होकर के हम गरीब जन्म देने तो कृष्ण जहाँ जाते हैं हम छाया उस पर करते हैं और कृष्ण के ऊपर में थोड़े थोड़े सुंदर उसी दल भूतों को भी इसी स्तर से कर रहे हैं। इसके द्वारा क्या हो रहा है कृष्ण कितने सुंदर और मधुर हैं राधा जी को प्रेरणा दे रहे हैं और उसकी धारा में ये स्नान करने से कृष्ण के प्रति प्रेम उनका किसने उनका सौंदर्य ये दूसरा स्नान का और सदुपर स्नान संध्या के समय में तीन दिन भर में खूब गर्मी पड़ी है गर्मी पड़ रही आज तो कुछ थोड़ी सी छाया होने के वजह से तो अभी गर्मी की कमी नहीं बल्कि खूब गर्मी में पानी बरस जाए थोड़ा सा तो और भीतर से भमका निकलता है और गर्मी बढ़ जाती पसीने आने लगते हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है तो आदमी इसमें ये हो जाए और यदि पास ही में नदी हो और खुद सुस्ती पर जल बह रहा हो जैसे कि हरिद्वार में या और सब नदियों में होता है गंगा के किनारे जाओ देखो उसमें तो सब समय निर्मल पानी रहता है गंगा में, उसमें जाओ इच्छा हो गई स्नान करने का, बता दी स्नान या धारण। वैसे ही अंतिम किशोर में लामानंद धारा है कवि परिज्ञान, लामानंद माने उनके अंग प्रत्यंग सब में जैसे सफेद वो क्या होता है
मुक्ता,
भीतर से उसका सौंदर्य एकदम निकलता रहता है। ऐसे पानी में स्नान जब धारा में स्नान को किया सब गर्मी उठी दूर निकलता एकदम दूर, और उसके अंग शरीर जब पानी में थोड़ा सा यहाँ तल 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 करता है ठीक उसी तरह से राधा जी के उस समय की सौंदर्य कृष्ण के द्वारा प्राप्त जो लावण्य है उसने एकदम स्नान कर समस्त अंग लावण्य में उस समय कृष्ण उसको देख करके अत्यंत माने ये सब कृष्ण संबंधी उनका हाव भाव कपड़ा वसन अलंकार जो कुछ है सब राज्य। ये साधक प्रेम की स्थिति में जब उसको भाव उत्पन्न हो जाए सब की स्थिति में ये सब साधन भजन में ये सब सहाय अरगा मंजरी के भाव अभी हम लोग इसकी कल्पना नहीं कर सके। भजन करते करते किसी दिन जब इसकी जो सुविधा होगी जीवन में वो क्षण आएगा तब इसकी महिमा मालूम होगी कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। रघुनाथ जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए जमीन खोद करके लाखों अस्तर्ती मोती हीरा जवाहरात भर करते रहते और उसको पता नहीं। वैसे हम लोगों के लिए इन महात्माओं ने रूप और रघुनाथ जो स्वामी ने ये इसके संबंध में हम आपको दिल कहें आज मैं सम्मान क्या कर सकते हैं।